ओम शांति। राजयोग शिविर के अंतर्गत आज का जो ये सत्र है कि जिसमें काल चक्र का गुह्य रहस्य है, क्योंकि अब तक जो आपने सत्र सुने ये सारे सत्र योग से संबंधित थे, आत्मा का ज्ञान, पिता परमात्मा का ज्ञान, राजयोग का आधार विधि एवं विभिन्न अवस्थाएं। परंतु अभी का जो सत्र है वह है समय का चक्र, जो हमारी जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। मनुष्य मन के अंदर अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, विशेषकर समय को लेकर के, कि ये समय का चक्र क्यों चलता है, कैसे चलता है, और सुख दुख किस हिसाब से प्राप्त होता है। अनेक प्रश्न मन के अंदर उत्पन्न हो जाता है। अभी भी हमने बहुत सुंदर एक गीत सुना कि समय का पंछी उड़ता जाए, और ये समय किसी के हाथ नहीं आता है, और बाद में मनुष्य को अफसोस करना पड़ता है कि समय के रहते अगर ये कार्य कर लिया होता था तो आज ये समय नहीं आता था। तो समय को समझना आवश्यक है, क्योंकि समय भी हमें कुछ न कुछ संकेत देते हैं। जो व्यक्ति उन समय के संकेतों को समझ लेते हैं और उस अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, तो समय उनको हर परिस्थिति में आगे से आगे बढ़ाता जाता है। अगर समय के विपरीत दिशा में चले तो समय बड़ा कठोर हो जाता है, वह अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़ना भी आरंभ कर देता है। इसीलिए दुनिया में कहा हुआ है कि समय बड़ा बलवान है, समय के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। तो ये समय हमसे क्या कह रहा है? ये समय हमसे क्या कह रहा है? समय को समझना, उसके संकेत को समझना जरूरी है। तो जैसे समय के लिए यही कहा जाता है कि समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, तो जरूर है कि समय हमसे भी समय प्रति समय एक परिवर्तन की ही मांग करता है। जब भी कोई परिस्थिति समस्या जीवन में आती है तो वास्तव में वो इंसान से एक प्रतिउत्तर की मांग करता है कि अब इस हाल में क्या प्रतिउत्तर देना है। और अगर उस वक्त व्यक्ति नकारात्मक प्रतिउत्तर देना आरंभ कर देता है तो समय कठोर हो जाता है। इसीलिए समय परिवर्तनशील है, तो हमें जो परिवर्तन को अपनाना है वो भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला परिवर्तन अपनाने की आवश्यकता है। तभी किसी ने सही कहा है, इफ यू कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज एंड दैट विल बी अ पेनफुल प्रोसेस। समय की मांग है परिवर्तन, और समय के हिसाब से अगर परिवर्तन को अपना लिया जाए तो वो समय हमें आगे बढ़ा देता है, और जीवन में सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं, नहीं तो समय हमें मजबूर करेगा परिवर्तन होने के लिए, और वो समय बड़ा दर्दनाक होगा क्योंकि जीवन में इच्छा है नहीं और समय की मजबूरी है, परिवर्तन होना पड़ रहा है, तो वो समय बड़ा दर्दनाक होता है। फिर भी अगर परिवर्तन को नहीं अपनाया तो समय को दूसरे शब्द में काल भी कहा जाता है। वो काल तो क्या महाकाल का रूप भी धारण कर लेता है और उस व्यक्ति के अस्तित्व को इस संसार से मिटा देता है कि जो समय के हिसाब से नहीं चल सका। तभी कहा समय का पंछी उड़ता जाए, और इस संसार में समय के साथ हर चीज परिवर्तनशील है। तभी कहा परिवर्तन ये कुदरत का नियम है, परिवर्तन होता आया है, होता रहेगा, लेकिन ये समय हमसे क्या परिवर्तन की मांग करता है। अक्सर लोगों की शिकायत यही रहती है कि पहले इतनी समस्याएं नहीं होती थी जीवन में, पहले इतनी परिस्थितियां नहीं होती थी जीवन में, और आजकल समस्याएं भी बढ़ गई है, परिस्थितियां भी बढ़ गई है, उसका कारण क्या? कहीं न कहीं हमारे प्रत्युत्तर देने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। इसीलिए ये समय का चक्र हमें क्या कहता है, वर्तमान समय हमें क्या प्रत्युत्तर देना है, तो समय को दिखाया गया है एक चक्र के रूप में। संसार में जितने भी चक्र बने हुए हैं वो हर चक्र नित्य चलता रहता है। दिन और रात का चक्र देखो नित्य चलता है, ऋतुओं का चक्र देखो नित्य चलता रहता है, मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के चक्र को देखो नित्य चलता है, कुदरत की साइकिल को देखेंगे, पानी वैपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बादल बरसते हैं, वो पानी नदियों के द्वारा पुनः समुद्र में आकर के मिल जाता है। तो समय का हर चक्र चलता रहता है जिसकी आदि और अंत नहीं है। दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ पता नहीं, चक्र माना जो नित्य चलता है। हाँ, मनुष्य ने अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए रात को 12 बजे के बाद दूसरा दिन कह दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये समय का चक्र रात को 12 बजे शुरू हुआ था, पता ही नहीं। इट्स अ साइकिल, साइकिल की बिगिनिंग और एंड नहीं होती है, वो नित्य चलता है। लेकिन हाँ, हर चक्र को चार अवस्था से जरूर गुजरना पड़ता है। जैसे दिन और रात के चक्र के बीच चार अवस्था है, सुबह दोपहर शाम रात्रि, रात्रि के बाद पुनः सुबह होती है। ऋतुओं के चक्र के बीच चार अवस्था है, ग्रीष्म बरसात शीतकाल बसंत, फिर ग्रीष्म आ जाता है। इसी तरह मनुष्य जन्म पुनर्जन्म के भी चार अवस्था है, बचपन युवा गृहस्थ वृद्ध। ऐसे ही एक काल चक्र की भी चार अवस्था है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग। कलयुग के बाद क्या होगा, पुनः सतयुग आएगा, क्योंकि ये चक्र है। कई लोग सोचते हैं इतना घोर पापाचार का युग कलयुग सतयुग में कैसे बदल जाएगा, कोई मनुष्य का काम नहीं है उसको बदलना। जिस तरह घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में अपने आप बदलती है, कोई मनुष्य सारी रात भी बैठ जाए देखने के लिए कि भोर कैसे निकलती है, भोर कब निकल आती है पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए कहा कि जिस पर घोर अंधेरी अमावस्या की रात सुनहरी सुबह में बदल जाती है, कुदरत की रचना में इस तरह सेटिंग है कि परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है और उस परिवर्तन से सुबह आ जाती है। ठीक इसी तरह यह कलयुग भी धीरे 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 परिवर्तन होते होते सतयुग की ओर आगे बढ़ रहा है। कोई चाहे या न चाहे, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, परिवर्तन होना ही है। लेकिन हर चक्र की एक अवधि जरूर होती है। जैसे दिन और रात के चक्र की अवधि है 24 घंटा, उसी में ये परिवर्तन हो जाता है, चक्र घूम जाता है। ठीक इसी तरह ऋतुओं के चक्र की अवधि है एक साल, एक साल में ये चक्र घूम जाता है। ऐसे ही ये समय के चक्र या सृष्टि चक्र की भी अवधि है 5000 साल। परंतु जब ये 5000 साल सुनते हैं तो मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। 5000 कहां से आया, किसने कहा, कहां लिखा हुआ है, क्या सबूत है कि 5000 साल का चक्र है। शास्त्रों में तो एक एक युग को लाखों साल बता दिया, ये 5000 साल का चक्र कैसे है। मैं उन लोगों को एक ही सवाल पूछती हूं कि लाखों साल का एक एक युग है, उसका कोई सबूत है, है? कैसे मान लिया बिना सबूत के? वैसे सबूत किसी चीज का नहीं है। 24 घंटे का क्या सबूत है? 60 सेकंड की एक मिनट बनी, 60 मिनट का एक घंटा बना, और इस तरह से ये दिन और रात के चक्र को 24 घंटे में बांट दिया। किस बेसिस पर ये 60 फिगर आया? अगर 100 सेकंड की एक मिनट बनाते थे तो नहीं चलता था? 100 मिनट का एक घंटा बनाते थे तो नहीं चलता था क्या? चलना ही था, घंटे कम हो जाते थे। तो 60 फिगर किस बेसिस पर आया? कभी प्रश्न किया, कभी कोई सबूत मांगा? अगर उसको स्वीकार कर लिया और अपने जीवन को 24 घंटे के हिसाब से ढाल लिया, अरे ड्यूरेशन तो उतना ही रहना था दिन और रात के चक्र का, चाहे उसको 24 घंटे में बांटो, 20 घंटे में बांटो या 25 घंटे में बांटो, ये तो कोई फर्क होने वाला नहीं था, वो तो उतना ही रहना था ना। लेकिन कभी हमने सबूत नहीं मांगा, कभी किसी को प्रश्न नहीं किया कि ये 24 घंटे ही क्यों, 60 सेकंड ही क्यों, 100 सेकंड क्यों नहीं, एक मिनट में, कोई प्रश्न नहीं। इसी तरह ऋतुओं का चक्र एक साल का है, और साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। किसने कहा? मॉडर्न साइंस ने कहा कि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं चक्कर लगाने में, और हमने स्वीकार कर लिया, कभी कोई सबूत मांगा? और इस तरह से 12 मास का कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर बन गया और सारी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हिंदू कैलेंडर देखा जाए तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल में कितने दिन होते हैं? साल में कितने दिन होते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से? हाँ, 354 दिन होते हैं। अब हिंदू कैलेंडर भी जो बना है वो भी एक साइंस पर बना है, और उस जमाने का साइंस जब भारत ने विश्व को जीरो दिया था कैलकुलेट करने के, तब मॉडर्न साइंस भी विकसित हुआ। अगर भारत जीरो नहीं देता था तो मॉडर्न साइंस भी कहां से विकसित होता था? तो हिंदू कैलेंडर भी जो बना है एक साइंस पर बना है, और आज भी अगर देखा जाए कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब अमावस्या और पूर्णमासी आती है तो पूरा समुद्र का पानी उछलता है ज्वार भाटा के रूप में, इतने एक्यूरेट। जितनी भी प्रेडिक्शंस होती है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि की हिंदू कैलेंडर के ऊपर होती है, इंग्लिश कैलेंडर पर तो पता ही नहीं चलता है इनको। इसलिए कहा कि 354 सही है, 365 सही है, पता नहीं कि कौन सा सही है। भारतवासियों ने कैलेंडर बना दिया अपना और हर 3 साल के बाद अधिक मास आता है और पूरा एक महीना बढ़ जाता है। दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं। दुनिया का कारोबार इंग्लिश कैलेंडर पर चलाते हैं और अपने त्योहार मुहूर्त जो भी है हिंदू कैलेंडर पर चलाते हैं, है कि नहीं। भावार्थ ये कि हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि 354 सही है, 365 सही है, कभी ये सवाल नहीं किया। दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं। अब सही क्या है, है ना। भावार्थ ये कि ये तो नहीं कहा कि मॉडर्न साइंस ने 365 दिन कहा इसलिए हिंदू कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो, या हिंदू कैलेंडर कहता है 354 दिन माना इंग्लिश कैलेंडर को फाड़ के फेंक दो। नहीं, दोनों कैलेंडर लेकर के चल रहे हैं। 24 घंटे का कोई सबूत नहीं है, 60 सेकंड कहां से आए उसका कोई सबूत नहीं है, 354 सही, 365 सही उसका कोई सबूत नहीं है, और 5000 का सबूत मांगते हैं। अगर उसको लेकर के चल सकते हैं तो 5000 को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। वैसे 5000 का सबूत है हमारे पास। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो महाभारत युद्ध को हुए कितने साल हुए, कितने साल हुआ महाभारत युद्ध को, 5000 साल। और उस महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है कि जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर के अंदर क्या चलता है, क्या चलता है, महाभारत चलता है कि नहीं चलता है, चलता है। तो 5000 साल हो गया, 5000 साल हो गया ना। महाभारत के अंदर जो पात्र दर्शाए हैं, शकुनी जैसे पात्र आज के समाज में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है, है? हाँ, महाभारत में तो एक ही शकुनी को दिखाया। आज समाज में कितने शकुनी है, हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा। दुर्योधन जैसे पात्र भी आज के समाज में है या नहीं। दुर्योधन जिसने धन का दुरुपयोग किया ऐसे बच्चे आज के समाज में है या नहीं है। दुशासन जैसे पात्र भी आज के समाज में है या नहीं है, है? तो महाभारत के जितने भी पात्र है वो तो इस समय प्रैक्टिकल समाज में दिखाई दे रहे हैं। तो 5000 साल हो गया ना। इस्लाम धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि कयामत का समय 5000 साल में एक बार आता है। और उनके पवित्र धर्म पुस्तक के हिसाब से कयामत का समय आ रहा है, तो हो गया 5000 साल। क्रिश्चियन धर्म शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पवित्र धर्म पुस्तक में भी ये बात आती है कि क्राइस्ट से 3000 साल पूर्व देयर वॉज हेवन ऑन अर्थ, 3000 साल पूर्व हेवन ऑन अर्थ, और 2000 साल बाद नॉस्ट्रोडेमस की भविष्यवाणियों के हिसाब से द गोल्डन ईरा इज टू कम। तो हो गया 5000 साल। 5000 साल का वर्णन हर धर्म में, लाखों साल का एक एक युग ये किसी धर्म में नहीं कहा गया है। इसीलिए कहा कि 5000 साल की एक अवधि है। लेकिन तब फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर आर्कियोलॉजी वाले जो कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों साल पुराना है वो सही है कि गलत, वो भी सही है। क्योंकि जिस तरह से एक दिन और रात का चक्र 24 घंटे का है, लेकिन ऐसे दिन और रात का चक्र कितनी बार घूम चुका है, अनगिनत बार। 2015 साल से हम गिनती करते आए, लेकिन उसके पहले भी तो दिन और रात का चक्र चलता था कि नहीं चलता था? चलता ही था, हमने गिनती नहीं किया तो क्या हुआ? ठीक इसी तरह एक काल चक्र 5000 साल का है, लेकिन ऐसे 5000 साल का काल चक्र इस पृथ्वी के ऊपर कितनी बार घूम चुका है? तो पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है ही ना, उसमें पत्थर निकलेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? तो वो भी सही है, ये भी सही है कि 5000 साल का एक चक्र है। अब ये 5000 साल का चक्र कैसे चलता है, उसको दिखाया गया है स्वास्तिका के रूप में। स्वास्तिका हर शुभ कार्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन किसी से भी पूछा जाए कि स्वास्तिका का अर्थ क्या है तो क्या कहेंगे? एक शुभ की निशानी है, हमारे पूर्वज करते आए इसलिए हमें करना है। लेकिन यही शुभ की निशानी क्यों है? हिंदू धर्म में भी ये निशानी देखने को मिलती है, जैन धर्म में भी ये निशानी देखने को मिलती है, इस्लाम धर्म में भी ये निशानी देखने को मिलती है। हिटलर बहुत मानता था स्वास्तिका में, क्रिश्चियन धर्म में क्रॉस, चार भाग बताए हैं क्रॉस के रूप में। तो हर धर्म में इस साइन को शुभ माना गया है, इसलिए स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से आता है। सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। यानी ये काल चक्र की हर घड़ी सदा शुभ है, उसकी कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। इसीलिए गीता के सार में ये बात आती है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा, तुम निश्चिंत रहो, बुरा कुछ है ही नहीं। तीनों घड़ी अच्छी है, जो बीत चुकी वो भी अच्छी है, जो चल रही है वो भी अच्छी है, और जो आने वाली है वो भी बहुत अच्छी है, तुम निश्चिंत रहो। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी शुभ कर्म भारत में जब होता है तो पंडित लोग जब आते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिका निकालते हैं, स्वास्तिका निकाल के ऊपर कलश रखते हैं और कलश के ऊपर नारियल रखते हैं। कभी भी आप पंडितों से पूछो कि ये क्यों करते हैं तो क्या कहेंगे? आपको नहीं समझेगा, हमें अपना काम करने दो। वास्तव में शायद वही नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। भगवान हमें आकर के इस समय इसका अर्थ बताते हैं। स्वास्तिका निकाला माना ये घड़ी भी शुभ है, ये घड़ी भी शुभ है। डोंट हैव एनी डाउट्स, मन के अंदर संशय नहीं लाओ, पता नहीं ये घड़ी शुभ है या नहीं है, ये घड़ी भी शुभ है। इसलिए स्वास्तिका निकाला, सुअस्ति, ये घड़ी भी शुभ है। लेकिन ये बात किस आधार पर सोचना है तो कलश रखा, कलश यानी मनुष्य का ये सर है ना, इसका शेप क्या है, कलश जैसा है। यानी ज्ञान युक्त बुद्धि से इस बात को सोचो कि ये घड़ी भी शुभ है, बी पॉजिटिव, और वो शुभ कर्म आरंभ करो तो उसका फल कैसा होगा? उसका फल हमेशा श्रेष्ठ ही होगा। इसीलिए ऊपर में नारियल रख दिया, नारियल को कहा जाता है श्रीफल, श्रेष्ठ फल। तो स्वास्तिका निकाला माना ये घड़ी भी शुभ है, और ये बात ज्ञान युक्त बुद्धि से सोची जाए और कर्म आरंभ करो, श्री गणेश करो, तो उसका फल कैसा होगा? श्रेष्ठ फल। कितनी सुंदर, भारत की रस्मों में कितनी सुंदर गुह्यता समाई हुई है, गुह्य रहस्य भरा हुआ है, जो जीवन जीने की कला सिखाता। लेकिन कभी हमने उस भाव से न कभी कोई शुभ कार्य किया, न हमें वो फल की प्राप्ति हुई। लेकिन तब कई बार कई लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं बहन जी, कोई कोई घड़ी ऐसी होती है जो बहुत बुरी होती है, उसको कैसे अच्छा समझा जाए। और उस वक्त बार बार एक ही प्रश्न मन के अंदर खड़ा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वास्तव में जब उसका जवाब नहीं मिलता है, मनुष्य कितना दुखी हो जाता है। बहन जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान भी ऐसा क्यों करते, कितने सारे सवाल आ जाते हैं। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, मल्टीपल फ्रैक्चर था। हॉस्पिटल में थे, जब हमें पता चला तो हमने सोचा चलो मिलके आते हैं। जब गए तो जरूर है कई लोग वहां खड़े थे, तो हमने यही कहा भगवान को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ये बात कही, वो भाई को बड़ा गुस्सा आया, भगवान का नाम नहीं लो मेरे सामने, भगवान बहुत बुरा है, सबका बुरा करता है। बार बार उसके मुख पर यही प्रश्न था, बहन जी मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भाई, ये कार एक्सीडेंट हुआ है, वो तो ठीक हो जाएंगे, जीवन तो बच गई, लेकिन फिर भी ये बात उसको हजम नहीं हो रही थी। हमें महसूस होने लगा कि जितना ज्यादा देर यहां खड़े रहेंगे, भाई का गुस्सा बढ़ता जाएगा, तो बेटर है बाहर निकल जाते हैं। बाहर धीरे धीरे सरकते हुए बाहर आ गए, तो उसकी पत्नी ने हमें देखा, वो आकर के कहने लगी, बहन जी कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो क्षमा कर देना। इस वक्त इसकी मानसिक स्थिति को समझने का प्रयत्न करना। मैंने उसको कहा, बहन जी एक बात समझ में नहीं आई कि भाई कोई नास्तिक नहीं है, भगवान में आस्था रखने वाले, आज उनके मुख से ऐसी बातें सुनाई दे रही है। तो उसने कहा कैसी बात नहीं है, फिर क्या बात है। तब उसने बताया कि वो कोई लायंस का या रोटरी का गवर्नर था और हमेशा समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, ये तो सभी जानते थे, लेकिन अब उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। और जब टेन्योर पूरा होता है तो कोई इंटरनेशनल गैदरिंग होती है, उसको उस गैदरिंग में जाना था, लेकिन 10 दिन पहले उसको ये कार एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, हॉस्पिटल में। अब 10 दिन के अंदर तो ठीक होके नहीं जा सकता, तो बार बार उसके सामने वही बात आ रही थी, अरे इतने बड़े बड़े लोग वहां आएंगे, उन सबके बीच में मेरा सम्मान होता था, उसको अवार्ड मिलना था, क्योंकि उसने समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया था, तो मुझे अवार्ड मिलता था। वहां से वापस में जब भारत आता था तो मेरे को कैसे रिसीव किया जाता, मेरे फोटो निकलते थे, कितना नाम होता था, और अब कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये घटना उसको हजम नहीं हो रही थी, और बार बार इसीलिए कह रहा था, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया। हमारे सामने सामने किसी ने उसको कह दिया, अरे भगवान को क्यों इतनी गाली देते हो, कर्म का हिसाब किताब भी तो हरेक का अपना होता है, वो तो भोगना ही पड़ता है। उसको और गुस्सा आया, कहा कि मैं कर्म का हिसाब किताब कहां मना करता हूं, लेकिन वहां से आने के बाद भगवान हिसाब किताब नहीं ले सकता था, पहले ही लेना था। आखिर हम तो वहां से निकल चले। 8-10 दिन के बाद गुरुवार का दिन था, तो सोचा चलो आज बाबा का भोग लेके जाते हैं, हो सकता है भाई की मानसिक स्थिति ठीक हुई हो। जैसे ही हम भोग लेकर के गए, हमें देखा तो कहने लगा, आओ बहन जी आओ, देखो भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। क्या हुआ, तो न्यूज़पेपर उठाकर दिखाया, जिस फ्लाइट में वो जाने वाला था वो फ्लाइट क्रैश हो गया, सारे लोग मर गए, है ना। उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, कहने लगा बहन जी देखो अवार्ड तो मिलना ही नहीं था, लेकिन जीवन भी खत्म हो जाती थी। फिर कहने लगा भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है। आज मुझे महसूस हो रहा है कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा अवार्ड दिया, एक नया जीवन दान दिया। फिर कहने लगा, बहन जी मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। 10 दिन पहले वो खुद ही सवाल कर रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। 10 दिन के बाद खुद ही जवाब देता है, क्योंकि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता था, है ना। और ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी ने मुझे कहा, बहन जी यही ज्ञान 10 दिन पहले आ जाता था तो कितना अच्छा होता। मेरी जिंदगी के सबसे बुरे दिन गए ना ये 10 दिन गए, न जाने भगवान को तो कितनी गाली दी होगी, लेकिन जो आता था भगवान का नाम लेता था उसके ऊपर भी गुस्सा करना शुरू कर देता था, इतने दुखी हो जाते थे, कभी कभी तो संबंध खराब होने जैसी स्थिति हो जाती थी। एक एक को मुझे बाहर ले जाकर के हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ता था कि प्लीज आप इनकी बात का बुरा नहीं मानना। तो बहन ने कहा, बहन जी जिंदगी में मैंने अपने कर्मों के लिए इतनी माफी किसी से नहीं मांगी जितना इसके कर्मों के लिए मांगी, तो ये ज्ञान पहले क्यों नहीं आ जाता है। मैंने कहा, देखो बहन जी गीता के सार में ये बात आती है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। कईयों ने घरों में ये सार रखा भी होगा लेकिन समय पर उसको अप्लाई नहीं करना जानते, और जब समय पर अप्लाई करना ही नहीं आता है तो दुखी तो होना है। अगर उसका एप्लीकेशन कर दिया जाए तो गुस्सा आएगा, टेंशन आएगा, है ना। उत्तर भी यही मिल जाता है, अप्लाई कर दो कि इसमें भी कुछ अच्छा है। जब ये समझ लेंगे तो कोई बात हमें विचलित नहीं करेगी, किसी बात से हम मेंटली परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं आएंगे। तो अप्लाई करना तो सीख लो। तो काल चक्र हमें यही कहता है कि हर घड़ी सदा शुभ है, कोई घड़ी बुरी है ही नहीं। अब ये स्वास्तिका का चक्र किस तरह चलता है, स्वास्तिका जो दिखाया गया है क्लॉकवाइज चलता है। कब शुरू हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सतयुग को माना जाता है। जिस तरह दिन और रात का चक्र कब शुरू हुआ मालूम नहीं, लेकिन उसका पहला पहर सुबह को माना जाता है, इसी तरह यह काल चक्र का पहला पहर सतयुग को माना जाता है। सतयुग यानी सत्यता का युग, जहां स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर इस पोजीशन में यानी आशीर्वाद, जहां हर आत्मा ईश्वर से भाग्य विधाता से श्रेष्ठ भाग्य आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करके इस संसार में आई थी, जहां कोई प्रकार के दुख अशांति का नामो निशान नहीं था। इसी युग को दूसरे शब्द में कहते सूर्य वंश, कि जैसे सूर्य की कला कम जास्ती नहीं होती है, ऐसे आत्माओं की कला भी कम जास्ती नहीं होती है, संपूर्ण स्वरूप में है। जिस युग के लिए बाइबल में बहुत सुंदर लाइन आती है जेनेसिस चैप्टर 1 में, कि भगवान ने जब ये पहला पहर रचा था तो ये दुनिया कैसी थी, लोग कैसे थे, तो उसमें लिखा है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। क्योंकि सतयुग से पहले कलयुग था, कलयुग में मनुष्य थे, तो गॉड मेड मैन उन्हीं मनुष्य को अपनी कृति में अपने स्वरूप में बनाया था। यानी जैसे ईश्वर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, ऐसे आत्माओं को भी परफेक्शन के रूप में बनाया था। उसी को ही गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। भगवान को मनुष्य को यानी कलयुग में जो मनुष्य थे उनको देव बनाने में देर नहीं लगी। उसी को ही हिंदू धर्म में कहा गया है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। क्योंकि कलयुग में जो नर और नारी है वो श्रेष्ठ करनी जब करते हैं तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनते हैं संपूर्ण रूप में। हर धर्म में किसी न किसी तरीके से ये बात कही हुई है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। अब वो दुनिया कैसी थी, तो उस दुनिया को अगर देखा जाए जहां संपूर्ण सतो प्रधानता पवित्रता थी, जहां कहते हैं शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे, तो कितनी पवित्र दुनिया थी, तो उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, जहां संपूर्ण सुख शांति व्याप्त थी और हर आत्मा अपने समृद्ध स्वरूप में थे, जहां पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे संसार में अवतरित होती है सतयुग में और कोई न कोई देवी या देवता का रूप ले लेती है, और इस तरह से पूरी दैवी सृष्टि थी, जहां राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। कैसे पता चला हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, तो श्री नारायण के साथ हमेशा एक शब्द जुड़ता है, सत्य नारायण या सूर्य नारायण। सत्य नारायण सूर्य नारायण इसीलिए कहा जाता है कि जो श्री नारायण सतयुग के राज्य करता थे और सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य नारायण कहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया जिसको कहा जाता त्रेता युग, यानी जहां थोड़ी त्रुटि आ गई, स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड पर नीचे आया, जिसको कहा जाता चंद्रवंश, के जैसे चंद्रमा की कला कम होने लगी ऐसे आत्माओं की कला भी धीरे धीरे कम होने लगी। पवित्रता सुख शांति समृद्धि इस दुनिया में भी है, लेकिन सतयुग जितनी संपूर्णता नहीं है। इस दुनिया में राज्य करने वाले कौन थे, तो श्री राम और श्री सीता का राज्य था। कैसे पता चला, तो श्री राम के साथ शब्द जुड़ता है श्री रामचंद्र, के सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, लेकिन जब दूसरा युग आरंभ हुआ त्रेता युग, तो उसको कहा गया चंद्रवंश, जहां श्री रामचंद्र जी का राज्य था। इसीलिए दिखाते कि श्री रामचंद्र के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे, परंतु जहां से श्री राम आए वहां से दूसरा युग आरंभ हो गया, जिसको आज भी लोग राम राज्य के रूप में याद करते हैं, और जिसके लिए कहा जाता है सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। इस तरह का राज्य था श्री राम का। लेकिन कई बार कई लोग सोचते हैं, अरे जहां राम था वहां रावण था, जहां कृष्ण था वहां कंस था, बुराई तो हमेशा ही दुनिया में रही है। अरे नहीं रही है, हमेशा के लिए दुनिया में बुराइयां नहीं होती, नहीं तो राम राज्य का स्वप्न क्यों देखते थे। महात्मा गांधी ने भी जब राम राज्य का स्वप्न देखा भारत को बनाने के लिए, तो क्या ऐसी दुख वाली दुनिया बनाने का स्वप्न देखा, नहीं, सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। इसीलिए उन्होंने स्वप्न देखा कि चलो सतयुग जितनी संपूर्णता तो नहीं ला सकते, लेकिन राम राज्य जैसा तो बना सकते हैं। जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, जहां रावण राज्य था वहां राम राज्य नहीं था। तो इसीलिए ये सृष्टि के हिसाब से कहा गया है कि त्रेता युग जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं है, और कलयुग आज जब रावण राज्य है तो राम राज्य नहीं, इसीलिए राम राज्य का स्वप्न देखा। लेकिन तब मनुष्य के मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि देवताओं ने ऐसे कौन से कर्म किए जो कला कम होने लगी, सूर्य वंश चंद्रवंशी बने, त्रेता युग में आना पड़ा, और त्रेता युग से द्वापर युग में गए, कोई कर्म करने की बात नहीं है। ये संसार एक नियम के हिसाब से चलता है, और संसार का नियम क्या है कि हर चीज विज्ञान के अंदर भी अगर देखा जाए तो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एंट्रोपी, और लॉ ऑफ एंट्रोपी की व्याख्या की गई है एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइज्ड टू अ डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेज। चीज पहले सुव्यवस्थित होती है और फिर अस्त व्यस्त हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है और इसी नियम के हिसाब से ये संसार में आत्माएं भी चलती है। मकान नया बनाया जाता है, खंडर बनाया नहीं जाता, खंडर बन जाता है। इसी तरह मनुष्य आत्मा भी अपने दिव्य स्वरूप में थे, धीरे धीरे कला कम होने लगी है, स्वाभाविक डेप्रिसिएशन जैसे चीजों पर लगता है, तो धीरे धीरे कर्म ऐसे होते जाते हैं मनुष्य के, समय परिवर्तन हो रहा है तो आत्मा की कलाएं भी क्षीण होने लगी। और इस तरह से देखा जाए तो जैसे दुनिया में भी कहा गया है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे अपने आप गिरती है, नीचे से ऊपर उसको चढ़ाना पड़ता है, कोई भी चीज सदा स्थाई एक ही स्थिति में नहीं रहती है। चंद्रमा संपूर्ण खिला हुआ पूर्णमासी कितना दिन रहता है, एक घड़ी, दूसरी घड़ी से फिर उसकी अमावस्या की और यात्रा प्रारंभ हो जाती है। चेंज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और अमावस्या में कितने दिन रहती है, एक घड़ी, फिर दूसरी घड़ी से उसकी पूर्णमासी की और यात्रा प्रारंभ हो जाती है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए कहा परिवर्तन एक नित्य प्रक्रिया है ये संसार में भी। और इस तरह से धीरे धीरे तीसरा युग आया जिसको कहा जाता है द्वापर। द्वापर माना जहां से सत्यता समाप्त हुई और दो पुर आरंभ हुए। सत्यता का युग जहां हर प्रकार से संपूर्णता थी, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे देवी देवताएं थे। सत्य माना एकता, राइटियसनेस, राइट हैंड माना। और जैसे द्वापर आया तो सृष्टि नाटक का तीसरा भाग जहां स्वास्तिक का हाथ लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाता है और इस पोजीशन में है, यानी मांगने की पोजीशन। सत्युग त्रेता को अद्वैतता का राज्य कहते हैं। द्वापर जब आता तो द्वैत भावना की प्रवेशता हुई और जैसे ही द्वैत भावना की प्रवेशता होती है तो अनेक प्रकार के मतभेद शुरू होते हैं और ये मतभेद के कारण क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, जिस कारण दुख का आरंभ होता है। और तभी कहा जाता है दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में करे तो दुख काहे को होए। कि दुख इस संसार में क्यों आया, तो सत्युग और त्रेता युग में भगवान को किसी ने याद ही नहीं किया, इसीलिए दुख आया। अगर सत्युग और त्रेता युग में भगवान को याद करते थे तो दुख क्यों आता था। अब द्वापर युग में जब भगवान को याद करना शुरू किया, लेकिन भगवान का परिचय तो था ही नहीं, दो युग तक किसी ने याद ही नहीं किया तो भगवान का परिचय भी नहीं था, तो किसको याद करे। इसीलिए जो देवी देवताएं होकर के गए थे, जिनकी स्मृति ताजा थी, तो उसी को ही भगवान मान करके भगवान भगवती के रूप में पूजा करने लगे। जैसे आज की दुनिया के अंदर कई संतों के भी मंदिर बन जाते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई ये संत तो इसी दुनिया का व्यक्ति है, फिर उसका मंदिर क्यों बनाया गया, तो लोग क्या कहते हैं, हमसे तो वो श्रेष्ठ थे, पूजनीय है, तो पूजनीय का मंदिर बना दिया। ठीक इसी तरह जो आत्माएं द्वापर युग में थी उनसे पूजनीय सत्युग और त्रेता युग के देवी देवताएं थे, इसलिए उनके यादगार मंदिर बनाकर पूजा करने आरंभ कर दी। परंतु भारत में जो राजाएं हो गए वो राजाएं शिव के पुजारी थे। इसलिए आप अगर कहीं भी कोई राजमहल में चले जाओ देखने के लिए, तो हर राजमहल में जो राजाओं की रियासत होती थी, उन रियासतों में अगर आप देखने के लिए कभी चले जाओ तो वहां देखने को मिलेगा कि एक मंदिर जरूर होता है। और हर राजाएं शिव के भक्त थे, शिव के पुजारी थे, लेकिन प्रजा देवी देवताओं की पूजा करने लगे, जो देवी देवताएं हो गए उनकी पूजा करने लगे। और इस तरह तरह से समय आगे बढ़ने लगा। द्वापर युग में परमात्मा को याद किया, लेकिन परमात्मा का परिचय न होने कारण जो पूजनीय देवी देवताएं थे उनके ही मंदिर बनाकर पूजा करना आरंभ कर दिया, और पूजा करने के साथ साथ जो देवी देवताएं इतने श्रेष्ठ सूर्यवंशी थे, जब द्वापर युग में आए, पांच विकारों ने घेर लिया, देह अहंकार में आ गए, तो पुजारी बनने लगे। और इसी समय में शास्त्रों का निर्माण हुआ, मंदिर बनाए गए, पूजा पाठ की रस्म रीत रिवाज बनाए गए, और इस तरह से भक्ति मार्ग आरंभ होता है द्वापर युग से। और जैसे ये भक्ति मार्ग आरंभ होता है, तो भारत के अंदर तो भक्ति मार्ग और हर स्टेट में कोई न कोई ऐसी विशेष आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का जन्म हुआ, लेकिन भारत से बाहर तीन महान धर्म पिताएं संसार में अवतरित होते हैं। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं, जिसने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद महात्मा बुद्ध आते हैं, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और उसके बाद क्राइस्ट आते हैं, जिसने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। ऐसे भारत से बाहर ये तीन महान धर्म पिताओं ने जन्म लिया, जिसने अपने अपने धर्मों की रचना की। कोई धर्म में वो धर्म पिताओं ने अपने आप को भगवान नहीं कहा है, उन्होंने हमेशा यही कहा, हम भगवान के पैगंबर हैं, पैगाम लेकर के आए। लेकिन जिस समाज में वो गए थे, उस समाज की रचना को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए, उन्होंने कुछ प्रचार आरंभ किए। वो प्रचार अलग अलग थे, और उस प्रचार के हिसाब से ही वो धर्म को बनाया गया। जैसे इब्राहिम जहां गए थे, वहां के समाज की व्यवस्था में जीवन जीने के कोई सिद्धांत नहीं थे, कोई नियम नहीं थे, तो उन्होंने जीवन जीने के सिद्धांत दिए, लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, जीवन जीने के सिद्धांत दिए, जो आज भी उनके पवित्र धर्म पुस्तक में लिखे हुए हैं। लेकिन अफसोस, उस समाज के लोगों ने उसको नहीं समझा। इसी तरह जहां महात्मा बुद्ध चले गए थे, उस समाज में उन्होंने क्या देखा? दो बातें देखी जिस पर उन्होंने अपने प्रचार किए। कौन सी दो बातें देखी? तो मनुष्य जीवन में दया नाम की चीज नहीं है, और मनुष्य के कर्म दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होते जा रहे हैं। तब उन्होंने अपने प्रचार में यही दो बात कही कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, कर्म ही धर्म है, वर्क इज वर्शिप। उन्होंने किसी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया। कर्म अच्छे करने के लिए कर्म फिलॉसफी को प्रचलित बढ़ावा दिया, लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने भी इस संदेश को समझा नहीं। महात्मा बुद्ध को बहुत मानते हैं, लेकिन आज भी अगर कोई भी चाइनीज कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में चले जाओ तो क्या खाते हैं लोग? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? कहते हैं जो दुनिया में कोई नहीं खाते हैं ना, वो ये लोग खाते हैं। आप सोचेंगे बहन जी को कैसे पता? कुछ समय पहले मैं हांगकांग चाइना के तरफ गई थी, तो जिस तरह बंबई की चौपाटी बहुत मशहूर है, जहां बेलपुरी पानीपुरी आदि के स्टॉल्स लगे रहते हैं, आजकल तो हर बड़े शहर में एक स्थान ऐसा बन जाता है चौपाटी जैसा, जहां बेलपुरी पानीपुरी आदि के स्टॉल लगे रहते हैं, लोग खास जाते हैं वहां खाने के लिए। ऐसे हांगकांग की चौपाटी भी बहुत मशहूर है। हमारा एक कार्यक्रम था, एक आईलैंड पर हमें बोट लेनी थी, गाड़ी पार्क किया, और जैसे ही 10 मिनट हमको चल के जाना पड़ा, वहां का नजारा जो देखा मुझे कभी भूलता नहीं। एक स्टॉल पर देखा तो रंग बिरंगी सांप लटक रहे थे, है ना, और लोग बड़े चाव से खा रहे। एक स्टॉल पर देखा तो बड़े बड़े खेखड़े तले जा रहे थे। एक जगह देखा तो बिच्छू की सब्जी बनाई जा रही, कहां देखा तो कॉकरोच की चटनी पीसी जा रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने क्यों कहा था कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखो, लेकिन अफसोस इस समाज के लोगों ने इस बात को समझा नहीं। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव तो है ही नहीं, और अभी तो आप लोग ने इंटरनेट के माध्यम से ये भी देखा होगा कि ताइवान के अंदर मनुष्य के बच्चे 10 दिन के 15 दिन के बच्चों को होटल वालों को बेचा जाता है, और वो $2000 में बेच करके वो छोटे से बच्चे को किस तरह आज मनुष्य हैवान बन करके खा रहा है। उसके बेक किया जाता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है, उसके सूप बनाया जाता है, कैसा हाल हो गया। प्राणी मात्र के प्रति तो दया भाव है ही नहीं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य के प्रति भी अब वो दया भाव नहीं रहा, हिचकिचाता नहीं है अपने बच्चे को खाने में भी। और इसी तरह वेस्टर्न दुनिया में चले गए, जहां जीसस क्राइस्ट गए थे, उन्होंने भी दो बातें देखी जिस पर उन्होंने अपना प्रचार आरंभ किया। और कौन सी दो बातें देखी उन्होंने? पहला देखा तो मनुष्य इतना झूठ बोलने लगा है, और दूसरा देखा कि मनुष्य को मनुष्य के प्रति नफरत भाव है। तब उन्होंने अपने प्रचार में यही दो बात कही, सत्य ईश्वर है, प्रेम ईश्वर है। लेकिन अफसोस, जो सत्य और प्रेम का संदेश देने वाले थे उनको क्या किया? क्रॉस पर चढ़ा दिया, और कितना टॉर्चरिंग करके उसको क्रॉस पर चढ़ाया, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष कर दिया कि हम अपने धर्म पिता को नहीं बख्शते तो बाकी किसको बख्शेंगे। कहने का भावार्थ कि जहां पर भी ये लोग चले गए, नफरत और झूठ का प्रयोग करके वहां के राजाओं को राजाओं से लड़ा दिया, राजाओं को प्रजाओं से अलग कर दिया, और पूरे देश का राज्य अपने हाथ में ले लिया। और राज्य देने वक्त क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, नफरत के बीज ऐसे बोए जो देश के टुकड़े कर दिए। खाली भारत पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया में जहां पर भी ये लोग गए उस देश का दो टुकड़ा हुआ है, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया, या दो देश ही अलग बना दिए। आज दुनिया में 350 लड़ाइयां चल रही है, उन्हीं बॉर्डर्स पर चल रही है जिस देश के दो टुकड़े हुए हैं, भाई भाई को लड़ा दिया। और इस तरह से धीरे धीरे सृष्टि नाटक आगे बढ़ता गया, और चौथा युग आया जिसको कहा कलह क्लेश वाला युग, जहां हर प्रकार की बुराई अपने चरम सीमा को प्राप्त कर लेती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, अति पापाचार, अति दुराचार, अति की स्थिति हो जाती है। और इसीलिए इसी युग को दूसरे शब्द में कहा जाता है रावण राज्य। तो जहां राम राज्य था वहां रावण राज्य नहीं था, जहां रावण राज्य है वहां राम राज्य नहीं है। इसको रावण राज्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि रावण के लिए कहा गया है कि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, ऊंची जाति का था। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं, 10 इंसानों जितनी बुद्धि थी उसके पास। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, वायु अस्त्र सब प्राप्त थे उसको, इतना शक्तिशाली था। रावण जैसा धनवान कोई नहीं, पूरी सोने की लंका थी। और रावण जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा, खूब भक्ति करता था, खूब तपस्या करता था। यानी जीवन की जो चार आवश्यकता मानी जाती है, अर्थ, बल, बुद्धि और भक्ति, ये चारों ही रावण के पास थी। लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि दो बातों की कमजोरी उसके जीवन में आ गई थी। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर था, और चरित्र भ्रष्टता उसके जीवन में आ गई थी। सीता जी को उठा कर ले आया तो चरित्र भ्रष्टता उसके अंदर आ गई। ये दो बातों के कारण उसका सर्वनाश हुआ। आज की दुनिया भी रावण राज्य है, क्योंकि आज सभी प्राणियों में उत्तम प्राणी मनुष्य है, ऊंची जाति का है। मनुष्य जैसा बुद्धिशाली विद्वान कोई नहीं है। विज्ञान से तो आज मनुष्य की बुद्धि 10 गुना आगे हो गई है। रावण की तरह आकाश मार्ग से जाने लगा है, समुद्र के मार्ग से जाता है रावण की तरह, सिद्धि प्राप्त है उसके पास में। रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, तो आज के मनुष्य जैसा शक्तिशाली भी कोई नहीं। मनुष्य के पास भी मिसाइल पावर है, और वो मिसाइल्स का नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, यही सारे मिसाइल्स के नाम है। मनुष्य जैसा भक्त भी कोई नहीं मिलेगा। गली गली में मंदिर है, एक गली में 10 मंदिर होंगे, एक गली में 10 मंदिर होंगे। इतना मनुष्य भक्ति कर रहा है, खूब तपस्या कर रहा है, उपवास तीर्थ सब कुछ कर रहा है, और मनुष्य जैसा धनवान भी कोई नहीं। रात्रि के समय में अगर बड़े शहरों का नजारा देखा जाए तो सोने की लंका से कम चमकदार भी नहीं है। पॉम्प एंड शो, ग्लैमर की दुनिया है, सोने की तरह चमक रही है ना? तो मनुष्य के पास भी आज ये चारों चीज है, अर्थ बल बुद्धि और भक्ति। लेकिन आज मनुष्य भी किस ओर आगे बढ़ रहा है? अपने ही सर्वनाश की ओर। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में भी दो बातों की कमजोरी आ गई है। कौन सी? अहंकार चरम सीमा पर है, और अनैतिकता, चरित्र भ्रष्टता उसके जीवन में भी आ गई है। इसीलिए उसका सर्वनाश की ओर आगे कदम बढ़ता जा रहा है। आज की दुनिया के अंदर जहां हर इंसान अपने आप को बंधन में महसूस करता है, किसी को बुरी आदतों का बंधन है, व्यसनों का बंधन है, बुरे स्वभाव संस्कार का बंधन है, जिस कारण समय अति की ओर जा रहा है। मनुष्य आत्मा खाली कर्मेंद्रिय का गुलाम नहीं बना है, लेकिन विकारों का गुलाम बन गया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय स्वार्थ उसका गुलाम बन चुका है, और उसकी शक्लें तो देखो कितने विकृत हो गई है। ऐसी विकृति जब जीवन में आ जाती है, जब न खुद का परिचय है न खुदा का परिचय है, तो मनुष्य भगवान को भी आज कहां कहां ढूंढ रहा है, किस किस की पूजा करने लग पड़ा है। कहां देखो तो नदियों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो सूर्य की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो जानवरों की पूजा कर रहा है, कहां देखो तो वृक्षों की पूजा कर, किस किस की पूजा कर रहा है। न खुद का परिचय है न खुदा का परिचय है। ऐसी जब हालत हो जाती है, इसी को तो अधर्म कहेंगे, धर्म अधर्म की चरम सीमा कहेंगे। और जो भगवान ने वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्, ऐसे अधर्म पर ही भगवान को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। लेकिन जब ये बात कहते तो लोग क्या कहते हैं? नहीं नहीं, अभी तो कलयुग बच्चा है, 4,32,000 साल का युग, उसमें से 40,000 साल बीता है, अभी तो बाकी है कलयुग। अब सोचने की बात तो ये है कि अगर कलयुग अभी बच्चा है तो बुढ़ापे में क्या होगा? हाँ, वो कवि प्रदीप जी का गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, है ना, कितना बदल गया। और दूसरा एक गीत भी याद आता है, श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए? ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या नहीं होगा। और कलयुग की जो अंतिम निशानियां गरुड़ पुराण में बताई है, वो सारी निशानियां उस गीत में वर्णन की हुई है क्या क्या होगा। तो अब कलयुग बच्चा नहीं है, उन निशानियों के हिसाब से तो कलयुग अभी बच्चा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बचा है। बच्चा नहीं है लेकिन थोड़ा सा बचा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है। आज विज्ञान भी उस बात की पुष्टि करने लगा है, वैज्ञानिक लोग भी चिंतित है, जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगी, ओजोन लेयर्स के होल्स बढ़ते जा रहे, कहते पूरा ऑस्ट्रेलिया खंड जितना होल ओजोन लेयर में हो गया है, जिस कारण सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आ रही है और जिस कारण से ये संसार के अंदर कई बीमारियां बढ़ रही है, ऑक्सीजन का सोर्स कटता जा रहा है। यहां पर एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का प्रोग्राम था, उनसे बातचीत करते हमने उनको पूछा जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये पॉपुलेशन को जीवित रहने के लिए कितना परसेंटेज फॉरेस्ट होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कम से कम 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। हमने उनको पूछा इस वक्त कितने फॉरेस्ट है, तो कहा ऑन पेपर 14%, प्रैक्टिकल में 11% और ये भी अगर 9% हो गए तो ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अब 11 से 9 होने में कितनी देर लगेगी, लाखों साल लग जाएंगे। इसलिए कहा कि आज प्राकृतिक असंतुलन और ये प्राकृतिक असंतुलन के कारण बड़े से बड़े पैमाने पर भूकंप आ रहे हैं, बड़े से बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फट रही है, सुनामी लहरें उठ रही है, चक्रवात तूफान आ रहे हैं, और जो भी मिसाइल्स बने हुए हैं रखने के लिए तो नहीं बनाए हैं ना, उसका प्रयोग तो होना ही है, चाहे गलती से ही प्रयोग हो जाए। आज सारे मिसाइल कंप्यूटराइज कंट्रोल है, एक बटन दबाने की देरी पर आकर पहुंचे हैं, बटन दबाते ही सारे मिसाइल्स छूटने लगेंगे। अब जो व्यक्ति उस कंप्यूटर के पास बैठा रहता है देखने के लिए कि मिसाइल कहीं से आए नहीं आए, आए नहीं आए, एक दिन घर में झगड़ा होगा, उसको सिजोफ्रेनिक अटैक आया और आएगा तो क्या करेगा, सोचेगा दबा दो बटन, खत्म करो खेल, मरो और मारो सबको, कितनी देर लगेगी। इसीलिए कहा जाता बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी बची है, अब ज्यादा समय नहीं है। इसीलिए भगवान ने जो वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, मैं भी अधर्म के चरम सीमा पर इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ, पृथ्वी में भी, भारत पर, भाग्यशाली है हम, भारत में भी एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के ज्ञान और योग की शिक्षा देते हुए भगवान भी अब यही कहते अब वापस घर जाना है, वी आर ऑन अ रिटर्न जर्नी, वापस घर जाना है, अब चलो बच्चे तैयार हो जाओ। लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं ना तो सिर्फ दो बातें कहते हैं, जैसे वो महान आत्माएं भी संसार में आए, दो दो बातें कही उन्होंने भी, लेकिन अफसोस उस समाज के लोगों ने उसको समझा नहीं, इसकी आज ये संसार कैसे हालत में पहुंच गया, भगवान ने ऐसा संसार नहीं बनाया था, लेकिन हमने उनकी शिक्षाओं को समझा ही नहीं, इसलिए ऐसी हालत में पहुंच गए। अब भगवान भी आकर सिर्फ दो बातें कहते, लेकिन अफसोस आज के समाज के लोग भी उस दो बातों को सिर्फ मानते नहीं। आप लोग मानेंगे तो बताओ, मानेंगे तो बताओ कि नहीं मानना है आपको भी, क्या करेंगे? हाँ कि 10 सवाल खड़े कर देंगे मन के अंदर, मानेंगे मानेंगे तो बताओ। अच्छा, भगवान भी सिर्फ दो बातें कहते, क्या कहते हैं? पहली बात, आत्म शुद्धिकरण करो, और आत्म शुद्धिकरण के लिए योगी बनो, पवित्र बनो। लेकिन जब ये बातें सुनते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे बहन जी, सारी दुनिया पवित्र हो गई तो दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया को चलाने का ठेका हमारा थोड़ी है, वो तो ऊपर वाले का है ना, उसको पता है दुनिया कैसे चलानी है, हम क्यों चिंता करें, है कि नहीं? मुझे याद आता है कि हमारा एक कार्यक्रम था एक शहर में, 7 दिन की प्रवचन माला थी, सुबह शाम काफी लोग आते थे सुनने के लिए। अंतिम दिन एक बुजुर्ग भाई खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं कुछ बोलना चाहता। हमने कहा आइए, स्टेज पर आए। उन्होंने कहा पहली बार मैंने जीवन में ये सुना कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती है, और उनकी एक एक बात में मुझे इतनी सत्यता महसूस हुई। लेकिन आज दिन तक हम उनसे दूर भागते थे, कभी पास में से गुजरते नहीं थे, हमने कहा ऐसी क्या बात थी जो पास में से गुजरते भी नहीं थे, दूर भागते थे। तो कहा इनके बारे में समाज में बहुत गलत फहमियां फैली हुई है। हमने कहा क्या बात है, तो उसने बताया कि इनके बारे में समाज में ये कहा जाता है कि ये लोग भाई बहन बना देते, इसलिए वहां जाना नहीं। लेकिन पहली बार मैंने आज सुना तो इतनी सच्चाई महसूस हुई इनके बातों में। मैंने कहा ब्रह्मा कुमारियों को क्या पड़ी है किसी को भाई बहन बनाए, हम नहीं बनाते। कल से लेकर आपने जितने लेक्चर सुने, किसी लेक्चर में आपको बताया गया कि भाई बहन बन जाना है? नहीं, हम नहीं कहते। लेकिन एक आश्चर्य की बात जरूर मन में आती है कि मंदिर में तो आप सभी गए हैं, पूजा तो किया है, भगवान की प्रार्थना तो की है या नहीं की है? किया है। सभी ने एक प्रार्थना जरूर गाई होगी कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, भगवान को कहा है या नहीं कहा है? कहा है, या सिर्फ भाइयों ने कहा, बहनों ने कुछ और कहा कि मेरे पति के मात पिता तुम मेरे सास ससुर, कभी कहा भगवान को ऐसा? जब ये प्रार्थना गा रहे थे तब कौन बन गए थे आप, कौन बन गए थे? और ये प्रार्थना ब्रह्मा कुमारियों ने सिखाई थी क्या? तो क्यों ब्रह्मा कुमारियों को बदनाम करें? हमने तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं सिखाई। हम परमात्मा का पैगाम जरूर सुनाते हैं, करना न करना आपकी मर्जी। फिर भगवान को नहीं कहना, फिर भगवान को नहीं कहना कि हे प्रभु आप तो जानी जाननहार है, सब कुछ जानते थे, फिर हमको बताया क्यों नहीं? इसीलिए हम कह रहे भगवान ने ये मत भी क्यों दी है, योगी बनो पवित्र बनो ये मत क्यों दी है? क्योंकि भगवान को कहते हैं जानी जाननहार, सब कुछ जानता है। क्या जानता है? भगवान समय को बहुत अच्छे से जानता है, और समय के संकेत को देखते हुए भगवान हमें कह रहा है। आज समय भी क्या संकेत दे रहा है? चलो भगवान की न सुनो, समय की तो सुनो। ये समय क्या कह रहा है? आज समय के अंदर, आज के समय में सबसे नंबर वन पर जो बीमारी चल रही है, कौन सी चल रही है? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो समय की पुकार भी यही है कि आत्म संयम को धारण करो। लेकिन फिर भी मनुष्य ये समय की पुकार को सुन नहीं रहा है। समय का दूसरा संकेत कौन सा? कि न्यूज़पेपर तो आप सभी पढ़ते हो, एक खबर हर रोज छपती है। कौन सी खबर? कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के कृत्य छपते हैं। पढ़ने पर आपको कैसा महसूस होता है? हर रोज किससे तो कितने होते होंगे, एक दो छपते हैं। बाकी समाज के अंदर जिस तरह की विकृति बढ़ती जा रही है, उसके कारण कामेशु क्रोधेशु मनुष्य के किससे कितने हैं। और आपका विवेक क्या कहता है, आने वाले समय में ये कृत्य बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे। उस वक्त आत्मरक्षा का साधन क्या है? कोई इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। शास्त्रों में भी दिखाया है, रावण जैसा रावण जो इतना शक्तिशाली था, सम्मोहित करके सीता जी को उठाकर ले आया, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा उसको। अब सीता जी के पास आत्मरक्षा के लिए कौन से शस्त्र थे? एक घास का तिनका, जो उठा करके सीता जी ने चैलेंज कर दिया रावण को कि रावण इस घास के तिनके से आगे कदम भी बढ़ाया तो जल जाएगा, ऐसी शक्ति है। कौन सी शक्ति थी सीता जी के पास? 14 साल के ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी, जिस कारण रावण जैसा रावण भी डरता था, उसको स्पर्श करने की हिम्मत नहीं थी। कई लोग हमें कहते हैं फिर ऐसे समय में भगवान मदद क्यों नहीं करता है? अरे भगवान मदद करना चाहता है, इसीलिए तो कहता है योगी बनो पवित्र बनो। क्योंकि भगवान को कहा जाता है परम पवित्र, तो उसकी मदद को स्वीकार करने की पात्रता तो चाहिए। अगर पात्रता नहीं होगी तो कैसे मदद को स्वीकार करेंगे? जिस तरह दुनिया में कहा जाता है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रहता है, ऑर्डिनरी बर्तन होता है तो फाड़ देता है, इतना भारी वो दूध होता है जो बर्तन फाड़ देता है। इसलिए शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रहता है। तो परम पवित्र परमात्मा की मदद को अगर स्वीकार करना है तो उसकी पावर कितनी होगी, हाई वोल्टेज। उस पावर को स्वीकार करने की पात्रता तो चाहिए। भगवान मदद करना चाहता है, इसीलिए कहता है योगी बनो, पवित्र बनो। जो पवित्र बनता है वो भगवान की मदद को स्वीकार कर सकता है, नहीं तो समय का शिकार बनो। फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते थे, फिर आपने बताया क्यों नहीं, हम भी कर लेते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कई लोग हमें कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां दुनिया के अंदर, समाज के अंदर लोगों को अपनी वृत्ति को सप्रेस करना सिखाते। हम सप्रेस करना नहीं सिखाते, समझदारी से इस बात को जीवन में अपनाया हुआ है। अगर सप्रेस करते थे ना तो मेंटल पेशेंट हो जाते थे। सप्रेशन कहीं ना कहीं बाहर निकलता जरूर है और वो विकृत स्वरूप में निकलता है, लेकिन हर बात को यथार्थ रूप से समझ करके जीवन में धारण किया है, इसलिए विकृति नहीं बनी। लेकिन तब भी सवाल आता है कि फिर दुनिया कैसे चलेगी। आज से 2000 साल पहले की बात है, जीसस क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ था। अगर एक कुमारी मेरी बिना किसी भोग बल को जीसस को जन्म दे सकती है, उसको तो किसी ने भ्रष्टाचार नहीं कहा। आज भी उसको मदर मेरी के रूप में पूजा करते हैं लोग, उसकी उसके चर्चेस बनाते हैं। 2000 साल पहले की बात। हमारे शास्त्रों में ये बात आती है, पांडव और कौरव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मंत्रों के बल से। यानी संसार में एक समय ऐसा भी था जब मंत्रों के बल से उत्पत्ति होती थी। पांडव धृतराष्ट्र विदुर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दृष्टि के बल से। तो एक समय ऐसा भी था जब दृष्टि के बल से उत्पत्ति होती थी। श्री राम की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यज्ञ के बल से। श्री कृष्ण की उत्पत्ति कैसे हुई थी, योगेश्वर जिसको कहा, योग बल से जिसकी उत्पत्ति हुई। तो समय के अंदर, समय प्रति समय उत्पत्ति का रहस्य बदलता रहा है। ये तो कलयुग के अंदर जब आत्माओं में ताकत नहीं रही तो भोग बल को एक माध्यम बना दिया, बाकी सदाकाल ये संसार भोग बल से नहीं चला है। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में भगवान के पास पूरा प्लानिंग है दुनिया को कैसे चलाना है। तब भी कई मनुष्य क्या पूछते हैं, अरे क्या सबूत है कि भगवान पवित्र विधि से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। भगवान जानते थे ये कलयुगी मनुष्य हर बात में सबूत जरूर मांगेंगे, इसलिए आज भी उसने नेचर में एक पक्षी को रखा है जो पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। मोर का पक्षी आज भी पवित्र विधि से उत्पत्ति करता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने ताज में मोर का पंख सुशोभित किया है, ये कोई डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया है। ये श्री कृष्ण ने सम्मान दिया है उस पक्षी को कि जितना परम पवित्र श्री कृष्ण की आत्मा है, कलयुग में भी ये पक्षी इतना पवित्र है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अपने ताज में उसको सुशोभित करके सम्मानित किया है। इसीलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास सतयुग के लिए पूरी प्लानिंग है कि दुनिया कैसे चलनी है। लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में। हम अभी किस्मत आपके हाथ में दे देते हैं कि अभी आपको जैसी अपनी किस्मत लिखनी है, आप खुद निर्माता है अपनी किस्मत के। कैसे कैसे लिखेंगे किस्मत, अब किस मत पर चलेंगे, किस मत पर चलेंगे, किसकी मत पर चलेंगे, भगवान की मत पर चलेंगे या दुनिया की मत पर चलेंगे, इसका फैसला आपको करना होगा। फिर भी मैं कहूंगी, आप सभी यहां पहुंचे हो, महान भाग्यशाली आत्माएं हो। क्यों पता है क्यों? आपको कई बार ब्रह्मा कुमारी बहनों ने, भाइयों ने निमंत्रण दिया होगा, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार आपने क्या कहा, अरे बहन जी ऊपर वाले की मर्जी होगी तो पहुंच जाएंगे, कहा था ना। अभी जो आए हैं किसकी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से या ऊपर वाले की मर्जी से? ऊपर वाले की। अब यहां से जाने के बाद किसकी मर्जी पर चलेंगे, किसकी मर्जी पर? इसलिए कहा किस्मत आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है। लेकिन अंत में एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान एक डायरी देख रहे थे। नारद जी ने बड़ी जिज्ञासावश पूछा, भगवान ये कौन सी डायरी देख रहे हो? भगवान ने कहा इसमें कुछ मेरी खास डायरी है, इसमें कुछ नाम लिखे। नारद जी ने पूछा इसमें कौन से नाम लिखे, किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जो भक्त मुझे बहुत याद करते हैं। नारद जी बड़े खुश हुए कि भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, क्योंकि मेरे जितना तो आपको कोई याद नहीं करता है। भगवान ने भी मुस्कुरा कर कहा तेरा नाम सबसे पहला नंबर, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता है। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई, कहा भगवान मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। देखा खुद का नाम पहला नंबर, बड़ा खुश हुआ, आगे देखने लगा भगवान ने किस किस का नाम लिखा है। उसमें ढूंढने लगा हनुमान जी का नाम कहां है, तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना, डायरी भगवान को दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। देखा तो हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे। नारद जी ने वहां पहुंचकर कहा ये सारा ढोंग बंद करो। कहा क्यों? कहा अभी मैं भगवान की खास डायरी देख के आया हूं जिसमें भगवान ने उसके नाम लिखे थे जो भक्त उनको बहुत याद करते, और पता है आपका नाम ही नहीं था सारी डायरी में, मेरा नाम सबसे पहला नंबर था। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी है। हनुमान जी ने कहा मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी याद करता हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। नारद जी क्या बोलते, फिर वहां से निकले चले, तो घूमते घूमते फिर भगवान के पास पहुंच गए, तो भगवान एक छोटी सी डायरी देख रहे थे। नारद जी ने देखा ये डायरी तो अलग है, पूछा भगवान ये डायरी कौन सी है? तो भगवान ने कहा ये मेरी पर्सनल डायरी है। तो नारद जी ने कहा भगवान ये पर्सनल डायरी में क्या लिखा है? तो कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं, किसके नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे हैं जिनको मैं बहुत याद करता हूं। नारद जी ने कहा आप भी याद करते? कहा मैं भी याद करता हूं। तो कहा मैं देख सकता हूं आप किसको याद करते हैं? कहा देख लो। देखा तो हनुमान जी का नाम सबसे पहला नंबर था, और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। भाग्यशाली कौन, जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो? जिसको भगवान। तो आप सबका नाम कौन सी डायरी में पता है? पर्सनल डायरी में, छोटी डायरी में। भगवान ने याद किया तब आप यहां पहुंचे हो। इसलिए कहा भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो, क्योंकि भगवान जो नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं वो इलेक्शन से नहीं करते, सिलेक्शन से करते हैं, है ना? आपके साथ आने वाले और भी थे, लास्ट मोमेंट कोई काम आ गया, कैंसल हो गए, और आप में से कई लोग ऐसे भी थे आने वाले नहीं थे, लास्ट मोमेंट किसी और की टिकट पर और सीट पर आकर के बैठ गए, है कि नहीं? अरे भगवान का बुलावा हो और आप न पहुंचे हो, ये हो नहीं सकता है। इसलिए कहा महान भाग्यशाली हो। हाँ, दुनिया में भगवान को याद करने वाले तो बहुत है, लेकिन भगवान ने जिसको याद किया वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई बिरला आप हो। इसलिए कहा पर्सनल डायरी में आपका नाम आ गया है, सिलेक्शन में तो ले लिया आपको, लेकिन अब इस सिलेक्शन में रहना है या निकल जाना है ये किसकी मर्जी होगी, किसकी मर्जी होगी? फिर भगवान को दोष नहीं देना कि हे प्रभु आप मुझे सिलेक्ट करके तो देखते थे, मैं भी कोई कम थोड़ी था, है ना? सिलेक्शन में आ गए, लेकिन अब यहां से जाने के बाद वो नारद जी वाला काम नहीं करना कि जो नहीं पहुंचे उसको कहो भगवान को तो तुम, हाँ भगवान तो तुमको याद करता ही नहीं, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो तो भी भगवान ने तो याद किया ही नहीं। ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करके उनको भी लेके आना, ठीक है ना? तो इसीलिए महान भाग्यशाली आप सभी हो, सिलेक्शन लिस्ट में आ गए, लेकिन अब किस्मत आपके हाथ में है, जैसी किस्मत आप अपनी बनाना चाहो बना सकते हैं। इसीलिए कहा, भगवान का पैगाम सुन लो समझ लो, समय की पुकार को सुन लो समझ लो, बाकी फिर आपकी किस्मत। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। चरित्रवान ही यहाँ महान है।